अभिमन्यु की बात मानकर इशिका सिंघानिया मेंशन चली गई थी। वहां इशिका के सिक्योरिटी के लिए पूरी तैयारी की गई थी, यहां तक कि उसके कमरे के अंदर तक सिक्योरिटी गार्ड छुपकर खड़े हुए थे। जैसा कि अभिमन्यु ने सोचा था, नक्श इशिका को अपने साथ ले जाने के लिए उसे बहकाने की पूरी कोशिश करेगा। नक्श ने यही किया। वो इशिका को खुद से शादी करने के लिए फोर्स कर रहा था। अनजाने में नक्श ने इशिका के सामने डॉक्टर मर्चेंट का जिक्र कर दिया था। इशिका अब तक इस बात से अनजान थी कि उसके डॉक्टर मर्चेंट की आईडी पब्लिक हो चुकी है। वो किसी भी हाल में नक्श के साथ जाने के लिए तैयार नहीं थी। गुस्से में आकर नक्श ने रिवॉल्वर निकाल ली। इशिका को डराने के लिए उसने अपनी तरफ से सामने की तरफ हवा में निशाना लगाया था, लेकिन पर्दे के पीछे छुपे सिक्योरिटी गार्ड को गोली लगने पर अचानक उसकी लाश नीचे आ गिरी थी। इसी के साथ नक्श सब समझ गया था। गोली की आवाज के साथ ही बाकी सारे सिक्योरिटी गार्ड अवेयर हो गए थे। अंदर छिपे हुए सिक्योरिटी गार्ड बाहर आए और उन्होंने नक्श को गन पॉइंट पर ले लिया था। उनमें से एक ने तेज आवाज में कहा, अपनी रिवॉल्वर नीचे करो, अगर कुछ भी हरकत करने की कोशिश की है तो मैं तुम्हें अभी शूट कर दूंगा। नहीं तो मुझ पर गोली नहीं चलाओगे, क्योंकि इशिका मेरे कब्जे में है। तुम्हें इसके सिक्योरिटी के लिए कहा गया था, अच्छे से जानता हूं तुम कोई गलती नहीं करोगे, नक्श हंसते हुए बोला। नक्श ने इशिका को कसके पकड़ रखा था और उसकी गन इस वक्त उसके पेट पर लगी हुई थी। जब सिक्योरिटी गार्ड की लाश नीचे गिरी, तब नक्श समझ गया था कि इशिका अपने और अभिमन्यु की शादी का सच जानती है। अब वो उसे उसके बच्चे को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। मैं प्यार से समझा रहा हूं इशिका, चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि अपने बच्चों की जान से हाथ धो बैठो, नक्श गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोला। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, हम तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएंगे, बदले में तुम भी अपनी गन नीचे कर लो, गार्ड ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं नहीं, तुम लोग अपनी गन नीचे करने वाले हो, नक्श उन्हें देखकर तेज आवाज में बोला। नक्श और गार्डों के बीच में बहस चल रही थी। इशिका को अचानक अपने सामने सब कुछ घूमता हुआ नजर आ रहा था। उसके कानों में बस उन लोगों की धीमी धीमी आवाज बढ़ रही थी। इशिका ने अपनी आंखें बंद की तो उसके सर में तेज दर्द हुआ। अचानक उसके दिमाग में कुछ दृश्य उभरने लगे। जब इशिका पार्थ की लैब में आग लगाने के बाद खुद भी घायल हो गई थी, वो ऑपरेशन थिएटर में थी और उसके कान में कुछ आवाजें गूंज रही थी। मुझे नहीं लगता कि उनके बच्चे अब जिंदा होंगे, हमें सबसे पहले सर्जरी करके बच्चों को बाहर निकालना होगा, पेशेंट की जान पहले से ही खतरे में है, उम्मीद नहीं है कि ये बचेंगे। हम बच्चों को नहीं बचा पाएंगे, लेकिन हमें इशिका की जान बचानी ही होगी, अभिमन्यु एक साथ दोनों बच्चों और इशिका का जाना झेल नहीं पाएगा। लेकिन डॉक्टर आप अच्छे से जानते हैं पेशेंट नहीं बच सकते हैं, इनके लंग्स में काफी सारी जहरीली गैस भर चुकी हैं। अस्पताल की आवाजें और उस कमरे में हो रहे शोर आपस में मिक्स होने लगे और इशिका का सर चकराने लगा। वो जोर से चिल्लाई। इशिका के चिल्लाने पर वे लोग शांत हो गए थे और उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे थे। इशिका, इशिका क्या हुआ तुम्हें, आर यू ऑल राइट, नक्श उसे संभालने लगा। इशिका की हालत देखकर एक पल के लिए वो बहुत घबरा गया था। इशिका ने पूरा जोर लगाकर नक्श को खुद से दूर धकेला और चिल्लाकर बोली, मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे चोट पहुंचाने के बारे में सोचने की भी, अगर मुझे अपने और अभिमन्यु की शादी के बारे में पता नहीं भी चलता तो भी मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाती नक्श राजवंश। एक पल के लिए नक्श की नजरें नीचे हो गई थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके माथे की नसें तनने लगी थी। उसने हमेशा से ही इशिका से बहुत प्यार किया था, लेकिन इशिका ने उसे हमेशा इग्नोर किया था। आयशा के जाने के बाद वो बार बार इशिका को अपने प्यार पर यकीन दिलाता रहा, पर हमेशा उसे मुंह की खानी पड़ी थी। नक्श ने इशिका की तरफ सर्द निगाहों से देखा और उसका गला पकड़कर कहा, मैं भी देखता हूं कि तुम मेरे साथ जाने से कैसे इनकार करती हो, अब तक प्यार से समझा रहा था लेकिन अब नहीं। इससे पहले कि नक्श फिर से इशिका के ऊपर रिवॉल्वर तानता और उसे अपने साथ चलने पर मजबूर करता, इशिका ने उसके हाथ को कसकर पकड़कर मरोड़ दिया था। तुम शायद भूल गए हो कि तुम लोगों की दी हुई सो कॉल्ड नाजायज बेटी की पहचान के अलावा भी मेरी एक शख्सियत है और मैं मार्शल आर्ट में ट्रेंड हूँ। मैं तुम्हारे घर के 10 सिक्योरिटी गार्ड से एक साथ निपट सकती हूँ, तो तुम कौन हो नक्श राजवंश, इशिका ने सख्त आवाज में कहा। इशिका की हरकत में आते ही वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए नक्श पर काबू पाना मुश्किल नहीं था, उन्होंने नक्श को पकड़ लिया था। वहीं नीचे गोली की आवाज सुनते ही केशव ने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया था। राधिका जब ऊपर पहुंची तो उसने नक्श को सिक्योरिटी गार्ड्स की कैद में पाया। नीचे एक गार्ड की लाश देखकर राधिका घबरा गई थी, पर इशिका सही सलामत थी, उसके लिए ये काफी था। राधिका जल्दी से इशिका के पास गई और उसे अपने गले से लगा लिया था। उसने पूछा, तुम ठीक हो ना, यहाँ यहाँ क्या हुआ था। इशिका राधिका से अलग हुई और नक्श की तरफ देखकर सख्त आवाज में बोली, सब ठीक है माँ, बस कुछ लोग अपनी असली हैसियत भूल गए थे, उन्हें उनकी जगह दिखाने का टाइम आ गया है। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुम अपने इस फैसले को लेकर जिंदगी भर पछताओगी, नक्श कसमसाते पूरे बोला। वो उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रहा था। अगर कभी जिंदगी में पछताना भी पड़ा तो तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, इशिका ने जवाब दिया। जल्द ही पुलिस वहां पहुंच गई थी और नक्श को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ राजवंश मेंशन में आशिका अभिमन्यु के बताए हुए काम पर लगी हुई थी। कुछ ही देर में उसने अभिमन्यु को अच्छी खबर दे दी थी, उन्हें नक्श का वीक पॉइंट मिल गया था।
आशिका ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया और कहा, ये देखिए मिस्टर राजवंश, नक्श की कंपनी के ये 3 मेन इन्वेस्टर्स हैं। ज्यादातर पैसा एस्कॉर्ट एंटरप्राइजेस से आता है। एंड गेस व्हाट, इस कंपनी का हेड ऑफिस दुबई में है और इसे एक माफिया हैंडल करता है। वो अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम इसी कंपनी के जरिए करता है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर उसने काफी मनी लॉन्ड्रिंग की है। स्कॉट इंटरप्राइजेस का नाम आते ही अभिमन्यु एक पल के लिए शांत हो गया था। आखिरी बार जब इशिका का एक्सीडेंट हुआ था तब वो स्कॉट इंटरप्राइजेस की ही एक ब्रांच में इंस्पेक्शन के लिए गई हुई थी। आशिका उसे बताते हुए आगे बोली, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस कंपनी के असली मालिक को सामने लेकर आना है, फिर उससे जुड़े सारे काम एक साथ बंद हो जाएंगे। बहुत टाइम से पुलिस इनके खिलाफ सबूत ढूंढ रही है, सिर्फ दुबई ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में इस आदमी ने ये काम खोल रखा है। ठीक है, फिर ऐसा करो, इसके खिलाफ जो भी सबूत हैं वो मेन अथॉरिटीज तक पहुंचा दो। तुम तो हैकर हो ना, और तुम्हारे लिए ये मुश्किल भी नहीं है, तुम अपनी पहचान छुपाकर आराम से ये कर सकती हो, अभिमन्यु बोला। लेकिन ये काफी रिस्की हो सकता है, हमें नक्श से बदला लेना है तो सिर्फ उसी की कंपनी को टारगेट करते हैं। नक्श की कंपनी न्यूयॉर्क में है और स्कॉट इंटरप्राइजेस की न्यूयॉर्क ब्रांच को टारगेट करके भी काम किया जा सकता है। फिर आप पूरे गिरोह तक क्यों जाना चाहते हैं, आशिका ने हैरानी से पूछा। समझ लो, बहुत पुरानी दुश्मनी है, आज अगर ऋषिका का ये हाल है तो उसके पीछे ये लोग ही हैं, अभिमन्यु ने बिना किसी भाव के कहा। आशिका ने उसकी बात पर हामी भरी, वो समझ गई थी कि आगे उसे क्या करना है। ठीक है, फिर मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आप ऋषिका की अपडेट लीजिए और मुझे कल दोपहर तक का टाइम दीजिए, मैं सब हैंडल कर लूंगी, आशिका बोली।
अभिमन्यु ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वहां से चला गया। जब से आशिका उसे मिली थी वो उसके लिए कुछ ना कुछ कर ही रही थी। ऐसे में अभिमन्यु ने यही सोचा था कि अगर उसे किसी से खतरा है तो वो उसकी सेफ्टी के लिए अपनी जान लगा देगा। आशिका से मिलने के बाद अभिमन्यु उसके टेक कैबिन से बाहर निकला तो उसके पास पृथ्वी का कॉल आ गया था। वहां जो भी हुआ था उसके बारे में पृथ्वी ने अभिमन्यु को सब कुछ बता दिया था। उनका प्लान जरूर सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन बदले में एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। ठीक है, तुम उसकी फैमिली का देख लेना, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए, अभिमन्यु गंभीर आवाज में बोला। जी सर, सब कुछ मैंने देख लिया है। दूसरा, प्रणाली कपूर से अभी हिसाब किताब बाकी है, पृथ्वी ने जवाब दिया। प्रणाली से मिलने मैं खुद पर्सनली जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा दूसरा काम करना होगा। कल अभिमान की शादी है, मुझे कुछ चीजें खटक रही हैं, बस उसी की थोड़ी रिपोर्ट चाहिए, अभिमन्यु बोला। पृथ्वी ने उसकी बात पर हामी भरी और अभिमन्यु के बताए हुए काम पर लग गया था। कुछ देर बाद इशिका भी घर आ गई थी। वो आशिका से मिलना चाहती थी पर आशिका काम में इतनी व्यस्त थी कि वो कमरे से बाहर तक नहीं आई थी। आखिर वो दिन आ ही गया था जब आशिका सपना पूरा होने वाला था। आज शाम अभिमान और उसकी शादी थी। अभिमान की असली पत्नी आशिका सिंघानिया भी बीच में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए नहीं आई थी। सब कुछ आशी के हिसाब से चल रहा था तो वो काफी खुश भी थी। आशी राजवंश मेंशन से आए अपनी शादी के जोड़े को देख रही थी। वो काफी खूबसूरत और हैवी लाल रंग का शादी का जोड़ा था जो खुद आशी ने अपने लिए सिलेक्ट किया था। उसके साथ में ज्वेलरी भी थी जो आशी अपने गले पर लगाकर ट्राई कर रही थी। आशी ने राजवंश खानदान की तरफ से भेजे हुए हार को अपने गले पर लगाया और मानसी से कहा, देखा, जब किस्मत अच्छी हो तो इंसान जीरो से भी हीरो बन जाता है। तुम यकीन नहीं करोगी मानसी, जब मैं अनाथाश्रम में रहती थी तब यही लगता था कि तृप्ति बजाज की वजह से मुझे पूरी जिंदगी इसी तरह गरीबी में बितानी पड़ेगी, पर उस औरत ने अपनी जिंदगी में पहली बार कोई अच्छा काम किया था। मानसी से उसके जीवन का कोई भी पहलू छुपा हुआ नहीं था। मानसी ने आशी का कंधा सहलाकर कहा, सही कहा, तुम अपनी रियल मॉम से कितनी भी नफरत कर लो लेकिन सच में उन्होंने काफी सारे सेक्रीफाइस किए हैं। क्या तुम उनसे आज के दिन एक बार भी बात नहीं करना चाहोगी? बिल्कुल नहीं, आशी ने तुरंत मना कर दिया था। मानसी ने उसको बात पर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, अपनी माँ से ना सही लेकिन अभिमान से तो बात करने की कोशिश करो। सगाई के बाद से उसने तुम्हें कॉल तक नहीं किया। तुमने भी उसके हालचाल पूछने के लिए कॉल किया था, उसने इग्नोर कर दिया था। उसे मैं खुद हैंडल कर लूंगी, वो मुझसे कितना भी दूर भाग ले लेकिन उसे शाम को शादी करने के लिए यहाँ आना ही होगा, आशी बेपरवाही से बोली। उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता था, उसकी लाइफ अच्छी जा रही थी, वही उसके लिए काफी था। वहीं जब से आशिका गई थी अभिमान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। फैमिली के बुलाने पर वो शादी की जरूरी रस्में करने बाहर जरूर आ रहा था लेकिन आशिका का इस तरह अपनी जिंदगी से जाना उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभिमान ही जानता था कि उसने खुद को किस तरह आशिका को कॉल करने से काबू कर रखा था। वहीं आशिका ने भी खुद को काम में पूरी तरह डुबा रखा था ताकि उसे अभिमान की याद ना आए। दोपहर के 1 बजे के करीब इशिका और अभिमन्यु आशिका के पास कमरे में आए। अंदर आते हुए अभिमन्यु बोला, काम करना अच्छी बात है लेकिन खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। बस होने वाला है मिस्टर राजवंश, आशिका ने जवाब दिया, उसका ध्यान अभी भी स्क्रीन के ऊपर था। ये सच में तुम्हारी तरह है, काम में इसे कुछ भी याद नहीं रहता,
अभिमन्यु इशिका से बोला। बोलते हुए उसने आशिका के पास पड़े फ्रूट्स और कुछ जूस के ग्लास की तरफ इशारा किया जो जो के त्यों रखे हुए थे। इस बीच आशिका का मोबाइल बजा। वो काम में इतना खोई हुई थी कि उसने जल्दी से कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन कर दिया था। सामने से एक आदमी की आवाज़ आई, थैंक्स फॉर चूजिंग अस मिस सिंघानिया, आपकी चॉइस सच में काफ़ी अच्छी है। वैसे आपकी बुक की हुई गाड़ी पूरी तरह तैयार है, बस आप एड्रेस और कुछ खास डिमांड हो तो वो मेंशन कर दीजिए, आपके हस्बैंड के लिए आपका गिफ्ट पहुंच जाएगा। रॉन्ग नंबर, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है और ना ही मैंने कोई गाड़ी बुक की है, आशिका ने बेपरवाही से जवाब दिया। आर यू श्योर मिस सिंघानिया, आप मिस आशिका सिंघानिया ही बोल रही हैं ना? हमने आपके दूसरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करने की ट्राई की लेकिन आप कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, तो हमें आपकी आईडी के जरिए यही नंबर मिला। काफ़ी मुश्किल से आपका नंबर हासिल हुआ है मिस सिंघानिया, और आप कह रही हैं कि ये रॉन्ग नंबर है? ऊपर से सारे डॉक्यूमेंट आपके नाम से बन गए हैं, वो आदमी हैरानी से बोला। मेरा नाम आशिका सिंघानिया ज़रूर है, लेकिन आप जिसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मैं वो नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरी आईडी आपके पास कैसे पहुँची। डोंट वेस्ट माई टाइम, आशिका ने काफ़ी रूखे तरीके से कहा। आशिका झुंझलाकर कॉल कट करने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने उसका फ़ोन उठाया और गंभीर आवाज़ में बोला, क्या आप बता सकते हैं कि वो दूसरा नंबर कौन सा था जिसके ऊपर आप कॉल करने की ट्राई कर रहे हैं और जिससे गाड़ी बुक की गई थी? मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। बात करते हुए अभिमन्यु बाहर चला गया था। वहीं आशिका और ऋषिका हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रही थी। ये एक नॉर्मल रॉन्ग नंबर या किसी तरह की ट्रिक भी हो सकती थी, पर न जाने क्यों अभिमन्यु इसे इतना सीरियसली ले रहा था।